भाग्य और भगवान। दादी जानकी का हमेशा ये शब्द याद आता है कि एक तरफ भाग्य है और एक तरफ भगवान है। कभी कभी ये संकल्प भी आता है कि ये जो भगवान का बेहद यज्ञ है, इस यज्ञ को भगवान ही चला सकता है और कोई नहीं चला सकते हैं। एनीवे, आज जनवरी मास, अव्यक्त मास, बाप दादा का महीना और हम सबका भी भाग्य है कि जनवरी मास में हमारे पास अभी ये हार्मनी हाउस में नोंद हो गई कि जनवरी मास और अगस्त मास में दीदी को आना ही है। और दीदी को आना है तो साथ साथ ये भी देखने में आता है कि पूरे नॉर्थ से, मिडलैंड से, लेस्टर, लेस्टरशायर, इन सब स्थानों से सब भाई बहने आते हैं। आप सबका भी हार्मनी हाउस में अव्यक्त मास में आप सबका स्वागत है, स्वागत है। मैं भूल न जाऊं इसलिए पहले बता देती हूं, कहीं बाहर से जो आए हैं शायद आपको पता न हो, हमारे पास चार धाम बने हुए हैं जो मधुबन में होता है। किसको नहीं मालूम है? हु डजंट नो चार धाम? जिस किन्ने नहीं देखा, वेरी क्लेवर। सब चार धाम करके आए हैं, परंतु जिन्होंने अगर शायद मिस भी किया हो तो हार्मनी हाउस में चार धाम बाबा करूम तो है ही, परंतु और तीन धाम बने हुए हैं, तो आप मिस नहीं करना।
ओम शांति। जैसे दीपिका बहन जी ने कहा, अव्यक्त मास में भी जितना ही 18 जनवरी का महत्व है उतना ही 21 तारीख का भी महत्व है। मैं समझती जो बाबा के नए बच्चे हैं शायद उन्हों को नहीं मालूम हो, बाकी तो सबको मालूम होगा। किसको नहीं मालूम कि 21 तारीख का क्या महत्व है? ओके, अ फ्यू। अच्छा, तो 18 जनवरी रात्रि को बाबा उड़ के बाबा के पास चले गए। 9:15 बजे का रात्रि का समय था। फिर तुरंत ही बड़ी दादी थी, दृष्टि लेते हाथ में हाथ मिला करके उसने बाबा को छुट्टी दी। फिर दादी ने तुरंत ही दादी गुलजार को फोन किया और वो उसी रात्रि को फिर दिल्ली से निकलकर सवेरे आकर के आबू में पहुंची। फिर बाबा की आज्ञा अनुसार सब कुछ चलता रहा। तो बाबा की एक तो आज्ञा ये थी कि तपस्या करें, तो तपस्या आरंभ हो गई। मैं पहुंची सोमवार के दिन, क्योंकि हम लोगों को रात्रि को समाचार मिला तो संडे दिन हम निकले आगरा से, मैं आगरा में थी। फिर हम मंडे दिन सवेरे सवेरे पहुंचे और तपस्या चालू थी और तपस्या की बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन सब तरफ थे और बाबा का चेहरा बिल्कुल फूल समान। हिस्ट्री हॉल में बाबा का वहां अर्थी रखी थी तो बिल्कुल सारा ही कास्केट में फूल थे और उस फूल के अंदर बाबा का चेहरा भी फूल समान बहुत ही सुंदर चेहरा लग रहा था। फिर तपस्या और चलती रही। फिर मंगलवार के दिन बाबा की आज्ञा मिली कि आज सब तरफ के बच्चे जिन्हों को आना था आज के दिन पहुंच ही जाएंगे। तो जो बाबा क्यू कहते थे, आबू रोड से ऊपर तक क्यू लगेंगे, तो वो फर्स्ट टाइम क्यू लगी थी नॉनस्टॉप। बाबा के बच्चे आते ही रहे, आते ही रहे। और फिर कार्यक्रम अग्नि संस्कार का सारा करने के पश्चात फिर बाबा को भोग लगा और सरप्राइज शिव बाबा आए, सबसे मुलाकात की, जिसमें बाबा ने हर प्रकार से आगे का कार्यक्रम मधुबन में किस तरह से चलेगा, मुरली कैसे होंगी, बठिया किस तरह से चलेंगी, दीदी दादी सबकी संभाल के लिए निमित्त है वो बताया, एक एक बात बाबा बताते गए। और जब दादी कुलसार पहले तो यहां हर साल आती थी, चाहे लंदन चाहे ऑक्सफोर्ड चाहे लेस्टर में भी दादी का कई बारी चक्कर लगता था, तो एक बारी दादी से हम लोगों ने पूछा कि हम लोग वहां थे तो हमने देखा कि बाबा आए, कैसे सबसे मिले, आपका क्या अनुभव था? तो दादी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। दादी ने कहा कि मुझे तो, मैं तो छोटी थी और दादी की आयु उस समय कुछ 30 समथिंग सालों की होंगी, क्योंकि वैसे भी लौकिक में दादी सबसे दादियों में से छोटी ही है। तो कहती है कि मैं तो छोटी थी सब दादियों में से, परंतु मुझे ही कहा कि तुमको भोग लगाना है, तो मैंने जी हां का पाठ पक्का किया। फिर जब भोग पर बैठी तो बाबा ने रस्सी खींच ली, वतन में बुला लिया, तो बाबा सामने से मिले। तो बाबा को मैंने कहा, बाबा आज बहुत सारे बच्चों को खूब खूब प्रश्न है, आपको सब बातों का उत्तर देना होगा बाबा, क्योंकि सबके मन में कई बातें हैं, सब कहते हैं कि बाबा उसका उत्तर देवे। तो बाबा ने ऐसे कहा, तो कहती कि जैसे कि मुझे बहुत आराम से बाबा ने सुला लिया, जैसे कि मैं रेस्ट में चली गई। फिर थोड़े समय के बाद दादी को लगा, वैसे तो 3-4 घंटा का कार्यक्रम था, दादी को लगा कि बहुत कम समय था, तो 5-10 मिनट के बाद फिर मैंने देखा कि बाबा सामने खड़े हैं। तो बाबा मुझे छुट्टी दे रहे थे, तो मैंने कहा बाबा आपने उत्तर नहीं दिया सबके प्रश्नों का। तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा नीचे गए थे, बाबा सबसे मिलके सबके प्रश्नों का उत्तर दे करके बाबा वापस आ गए। तो उस घड़ी दादी को पता चला कि कुछ ये नई बात हो गई, तब तक उनको भी मालूम नहीं था। तो शिव बाबा ने आकर के सब कुछ एक्सप्लेन किया, और जो बातें बाबा ने उस समय ध्यान पर दी आज तक भी वो ध्यान पर रखने वाली बातें हैं। परंतु मुख्य की बाबा ने कहा कि बाबा अंत तक चले नहीं गए हैं, साथ ही है, और अंत तक बाबा मिलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, शिक्षा देते रहेंगे, और साथ साथ बच्चों को बहलाते रहेंगे। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से सब कार्यक्रम को समाप्त किया। जब भोग लग रहा था और बाबा बोल रहे थे, तो एक छोटी सी चिड़िया आ गई। जनवरी मास में ठंडी के दिनों में वैसे वो चिड़िया वहां घूमती नहीं है ज्यादा, जब थोड़ी गर्माइश शुरू होती तो फिर उनका घूमना होता, परंतु ये एक चिड़िया आ गई। और बाबा यहाँ गद्दी पर बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल ही था, कोई और बड़ा हॉल तो था ही नहीं, और दादियां सामने और फिर छोटी कुमारियों को बिठाते थे सदा, तो हम नेक्स्ट लाइन में ज्यादा नहीं थे, क्योंकि मोस्टली टीचर्स ही आए थे, परंतु बाय चांस हम लोग 4-5 छोटी कुमारियां थी तो हम वहीं थे। तो मैं देख रही हूँ कि वो चिड़िया यहाँ बिल्कुल आ गई है, और बाबा भी अच्छी तरह से उसको खास दृष्टि दिया। तो मुझे लगता है, हो सकता है मेरी इमेजिनेशन हो, पर मुझे लगता है कि वही चिड़िया थी जिस चिड़िया को बाबा 10 बजे हर रोज अपनी कुटिया में टोली खिलाते थे। क्योंकि जब 68 जून में मैं बाबा से वहां मिली थी कुटिया में, तो बाबा ने हम लोगों को भी टोली दी, रजनी बहन को और मुझे, और फिर बाबा ने एक टोली वहां थल्ले पर रख ली। उस समय अलग था कुटिया ताजा बनाते थे केले के पत्तों का, तो बहुत उसमें होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, तो चिड़िया अंदर आ गई थी। तो बाबा ने खास थल्ले पर वहां टोली रखी और मैंने सोचा बाबा यहाँ क्यों टोली रख रहा, तो बाबा ने देखा कि मेरे ध्यान गया है, तो कहता है मेरी सखी आने वाली है। फिर ये चिड़िया आई और प्यार से अपनी टोली बैठ करके कणा कणा खा गई तो वो थी बाबा की सखी। तो वो सखी आकर के पहुंची बाबा को छुट्टी देने के लिए, मुझे ऐसे लगा। एनीवे बहुत ही सुंदर सीन थी। बाबा ने उसके बाद 13 दिन के अंदर यान तो बाबा खुद आए यान तो बाबा ने बहुत ही गहरा संदेश भेजा। तो वो जो संदेश भी भेजा या जो बाबा की पधरामनी भी होती रही, सब बातें बाबा ने क्लियर की कि आगे का यज्ञ का सिस्टम किस प्रकार से चलेगा जो आज तक चल रहा है। तो उसमें खास मुझे 2 कहानियां सुनानी है क्योंकि आज है कहानियों का दिन। जो दिव्य कहानी का गीत था वो भी बड़ा सुंदर था, जिसमें सारा ही शिव बाबा कैसे आए, पधरामनी कैसे हुई, फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा को नाम दिया, सारी वो पूरी ही कहानी है, हिस्ट्री है। परंतु 2 संदेश थे जो बहुत ही विशेष थे, जिसमें अनेक बातें स्पष्ट होती है। एक तो दादी गुलजार वतन में गई है और बाबा से प्रश्न पूछा है, बाबा जिस घड़ी आप छुट्टी ले रहे थे आपका अनुभव क्या था? तो बाबा ने कहा कि वैसे तो कभी ये प्रश्न बच्चे अपने बाप से पूछ ही नहीं सकते कि जाते समय आपकी हालत क्या थी, परंतु यहाँ हर बात की अलौकिकता है, तो बाबा भी आपका प्रश्न समझ गए और बाबा उत्तर देंगे। तो बाबा ने कहा कि दिन भर तो कहानी आपने सुनी है, बाबा को सवेरे थोड़ा दर्द था तो बाबा ने मूली नहीं चलाई। फिर बाबा ने ईशु दादी को बोला कि जो भी पोस्ट है वो ले आओ, बाबा अपना हिसाब किताब चुकतू करनी चाहता। बाबा के ये शब्द थे, मतलब था कि पोस्ट बैग आई, बाबा उस दिन 40 पत्र लिखे, हिसाब किताब जो रहा हुआ था वो पूरा किया। और फिर शाम को बाबा ने कहा कि भोजन का बेल जल्दी बजाओ क्योंकि आज 8 बजे रात्रि को बाबा सबसे मिलेंगे, नहीं तो क्लास का टाइम होता था 9 बजे, परंतु बाबा ने चेंज किया। फिर बाबा ने कहा कि सब बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि बाबा की सवेरे मुरली नहीं आई है तो बाबा की तबीयत को क्या हुआ। तो इस तरह से फिर दिन का कार्यक्रम ऐसे चला। फिर वो मुरली भी बहुत ही विशेष है, 18 जनवरी की साकार मुरली, अभी मैं उसका ज्यादा नहीं बताती। फिर 9 बजे तक बाबा ने मुरली चलाई और दरवाजे पर खड़े होकर के, बाबा ने तो गुड नाइट कहते थे, उस दिन बाबा ने सब बच्चों को कहा आज बाबा सबसे विदाई ले रहे हैं। जिस समय चल रही है सीन उस समय पता नहीं है, बाद में सोचते हैं कि बाबा ने तो अच्छी तरह से छुट्टी ली, विदाई ली। फिर बाबा कमरे में गए और बैठ गए और बड़ी दादी देखती है कि बहुत दर्द है, तो दादी किसको भेज रही है फोन करने डॉक्टर को, तो बाबा मना करता, परंतु वो तब तक चले गए थे डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो डॉक्टर को फोन नहीं लग रहा था, फिर दादा विश्व रतन गए उसको बुलाने के लिए, तो 20 मिनट लग गए आने में, तब तक पंछी उड़ गया। तो बाबा ने कहा कि पहले तो युद्ध का समय था, एक तरफ भोग बल दर्द और दूसरी तरफ योग बल। वो कर्मों का हिसाब किताब भी खींच रहा था, दर्द हो रहा था और फिर योग बल भी चल रहा था। फिर थोड़े समय के बाद भोगना पूरी हो गई और योग बल की जीत हो गई। तो जो हम लोगों ने लास्ट में चेहरा देखा, इतना सुंदर चेहरा, कोई दर्द का चेहरा नहीं था। नहीं तो दर्द का जो चेहरा होता है कुछ अलग ही होता, परंतु बाबा का बहुत मीठा मुस्कुराता हुआ चेहरा, योग बल की जीत। दूसरा से बाबा ने कहा कि सब बच्चे मेरे सामने संगठित रूप के रूप में सामने थे, कोई एक अलग बच्चे की याद नहीं थी, सब संगठित रूप में सामने थे। तीसरा कि मैं बाबा को कह रहा हूं, आपको यदि मुझे बुलाना है तो आप बुला सकते, मैं तैयार हूं, और यदि आप समझते कि मुझे यहां ही रुकना है तो मैं यहां भी रुक सकता हूं, जो मालिक कहे। तो बाबा ने खींच लिया। तो बाबा जो कहते हैं ना कि अंत मते सुगते, तो 33 वर्ष का पुरुषार्थ तो बाबा का राजयोग में बीता, परंतु उससे भी पूर्व सच्ची भक्ति क्या होती, दिल से भक्ति क्या होती, न सिर्फ खुद अपनी गति सदगति के लिए। बाबा ने तो कभी भक्ति कोई आश रख करके नहीं भक्ति की, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नहीं, वो तो सच्ची दिल की लगन से गीता का अध्ययन करना, औरों को गीता सुनाना, या घंटे घंटे शांत में बैठ करके योग अभ्यास करना, वो सब तो बाबा ने किया हुआ था। परंतु भक्ति भी जो की, आपको याद होगा, सर्व आत्माओं की प्रीत। बाबा जब पानी का जल देते थे तो बाबा ये नहीं कहते थे कि मुझ आत्मा के लिए, मेरे कल्याण के लिए, या ये नहीं कहते थे मेरे परिवार या मेरे दोस्तों के कल्याण के लिए, सर्व आत्माओं के प्रीत। तो पूर्व कल्प का संस्कार वो बाबा के अंदर इतना पक्का था, जो बाबा की दिल बेहद की दिल सबके लिए। तो जीवन भर बाबा की जो कहानी है उसमें भगवान के प्रति सच्ची लगन की कहानी, और फिर जिस घड़ी शिव बाबा आते तुरंत ही समर्पण और तुरंत ही आज्ञाकारी, ये तो आपको मालूम ही है। दूसरी जो बहुत विशेष और संदेश में 13 दिन के संदेश में आया वो ये था कि दादी गुलजार घड़ी को देख रही है, घड़ी चल रही है और सृष्टि नाटक है, परंतु घड़ी भी साथ साथ है, आत्माएं आती जा रही है, उसमें ऐड होती जा रही है। फिर जिस घड़ी संगम युग की अंतिम घड़ियां आती, एक आत्मा उस चक्कर से बाहर निकल के ऊपर चली जाती और शिव बाबा के साथ रुक जाती सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ने कहा कि अब तक जो भी आत्माएं गई हैं, चाहे बाहर वाले चाहे यज्ञ की आत्माएं, उन्होंने दूसरा जन्म लिया ही है, चाहे सेवा अर्थ हो, एडवांस पार्टी जिसको कहते, परंतु ये आत्मा ने जो कुछ करना था वो कर लिया और अब बाप समान बनकर ऊपर ही है वतन में, नीचे फिर दोबारा इस कलयुग की सृष्टि में उनका नहीं आना होगा, फिर दोबारा जन्म यहां कलयुग में नहीं होगा। तो ऊपर में जाकर के इतने वर्षों से 49 years, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी लंबी कहानी होंगी, परंतु बाबा ऊपर से किस तरह से एंजल रूप में सेवा कर रहे हैं, सारे विश्व की आत्माओं को जागृत कर रहे हैं, वो हम सीन देखते जा रहे हैं। तो अब तक विश्व को पूरा संदेश नहीं मिला है, मिल ही जाएगा ये तो गारंटी ही है। परंतु उसमें भी जो दिसंबर में बाबा की मुरली चली है उसमें खास बाबा का ये शब्द आया, और पहले तो मुझे आश्चर्य लगा कि क्योंकि पहले तो बाबा ने कहा था 5 दिसंबर को कि जब पूछा गया, निवय भाई जी ने पूछा कि इस वर्ष को कैसे मनाया जाए, तो बाबा ने उस समय कहा इस वर्ष को प्यार का वर्ष कहेंगे, और फिर तो कई मुरलियां प्यार की ही चली है। आज भी कितना डिटेल प्यार क्या होता, भगवान का प्यार कैसे विशेष है, वो मैं समझी 2 पेज दूर को बहुत डिटेल था प्यार, वो खास करके उसमें ईश्वरीय प्यार भगवान का प्यार क्या है वो सारा बाबा ने स्पष्ट किया है। तो फिर जब 31 दिसंबर को जो बाबा के सामने अपने भाई थे उन्होंने फिर दोबारा पूछा, तो पहले तो मेरे मन में क्वेश्चन आया बाबा ने तो बताया है, परंतु बाबा हमेशा नई बात बताएंगे। तो फिर बाबा ने कहा समाप्ति का वर्ष है, श्रेष्ठ वर्ष है, और फिर तीसरा सबको संदेश देने का वर्ष है। तो समाप्ति मतलब बस घर चले, तैयारी है, किसकी तैयारी है, कोई कह सकता है कि हाँ हम बिल्कुल हिसाब किताब चुक तू करके बैठे हैं, तो शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। और तीसरी बात सर्व आत्माओं को संदेश, अभी तक वो तो काम पूरा नहीं हुआ है, ये भी हम कह सकते। सारे विश्व तो क्या सारे लेस्टर को संदेश मिला है, कहेंगे कई आत्माएं हैं जिनको नहीं मालूम है बाबा का। लेस्टर तो क्या सारे यूके को सोचो, बहुत ही कम आत्माओं को बाबा का संदेश मिला है। और हाँ ये भी कह सकते कि संदेश देना बड़ी बात नहीं है, मीडिया के द्वारा सबको एक ढंग से संदेश मिल सकता, परंतु फिर भी जो राजधानी की तैयारी हो लगता है कि अभी तक थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो फिर समाप्ति का मतलब एक तो ये लगता है कि अब यह बाप दादा का पार्ट भी लास्ट की दिनों का चल रहा, लास्ट चैप्टर का भी लास्ट, बाबा ने इतनी पालना दी है, इतनी पालना दी है, जो आज भी 83 की मुरली हम पढ़ रहे थे तो कितनी गहरी बातें बाबा डिटेल में बताते हैं, बहुत ही डिटेल हर बात की एक्सप्लेनेशन बाबा ने दी है। तो कुछ रहा ही नहीं है बाबा को और सुनाने का, कहते ना कि चिड़ियों ने सागर को हफ कर लिया, तो सागर ने खुद ही सब कुछ बच्चों को दे दिया। तो हो सकता है कि अव्यक्त पाठ का भी कुछ और आगे का हम चैप्टर देखें, परंतु साथ साथ आज भी बाबा ने इशारा दिया कि फिर भी अभी तक जो कुछ पालना हमने ली है कहां तक हमने उसका रिटर्न दिया है। उसमें रिटर्न देना भी 2 बातों का होता, एक तो बाबा कई बार डेफिनेशन देते हैं, बाबा को रिटर्न देने का मतलब है कि खुद बाप समान बने अपनी पुरुषार्थ की बात, परंतु फिर दूसरी तरफ आज भी बाबा कहते थे रिटर्न देना मीन्स जितनी हमने सेवा ली है उतना हमें औरों की सेवा करनी होगी। आप सोचो कितनी पालना आपने बाबा से ली है। बाबा के कहीं तो बहुत पुराने बच्चे हैं, कहीं तो नए भी हैं, परंतु फिर भी कोई व्यक्ति 7 दिन का कोर्स करता, उस 7 दिन के अंदर भी चाहे वो लंबा कोर्स हो चाहे वो छोटा कोर्स हो कुछ भी हो, परंतु उस बीच में भी कितनी पालना मिलती, 10-7 डेज कोर्स के अंदर ही। और फिर मुरली तक पहुंचना, उसमें और पालना, फिर मुरली रोज सुनना, उसकी और पालना, मधुबन में जाना, वो तो बेहद की पालना। कदम कदम पर आप सोचो कितनी पालना हम सभी को मिली है, तो उसका रिटर्न देना, तो वो तो अभी तक नहीं हुआ। तभी फिर बाबा कहते थे कि अब का समय जो है, फिर भी शांति से आप अपनी स्थिति को और ऊंचा बना सकते, और आगे का समय जो कमसान का होगा, कमसान का समय आने वाला है, ये तो बाबा ने पहले से ही बता दिया, बहुत कुछ कमसान आजकल, फिर भी कहां ना कहां थोड़ा बहुत होता है, फिर शांत हो जाता, फिर जिस समय बड़ा कमसान होगा, उस घड़ी पुरुषार्थ की बात नहीं होगी, उस समय जो कुछ पुरुषार्थ हमने किया हुआ है उसका हमें फिर रिटर्न देखने को आएगा, कि हमारी स्थिति अभी भयानक सीन चल रही है, उस भयानक सीन के अंदर क्या मैं घबरा रही हूं, मैं डर रही हूं, या मैं नाराज हो रही हूं, या मैं दुखी हो रही हूं, या सीन यहां और मेरी स्थिति यहां। स्थिति ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं जाएंगी, परंतु जिसने जो अभ्यास किया हुआ होगा उस अनुसार उनकी स्थिति ऐसे ऊंची रहेंगी। तो बाबा इशारा दे रहे हैं कि अब भी जो कुछ समय चल रहा, बहुत कुछ हम बाबा से ले सकते, तो अब भी जो पालना मिल रही है उसका फायदा उठा करके हम अपनी स्थिति को इस तरह से ऊंची बना करके रखें। तो एक तो मुझे ये खास बात बतानी थी, जो बाबा ने समाप्ति का शब्द यूज किया तो उसका भाव किया, तो पुरुषार्थ की समय की समीपता, न कि ड्रामा की समीपता, परंतु पुरुषार्थ के समय की समीपता। और दूसरी कहानी ये सुनानी थी साकार बाबा की। बाबा आज भी बहुत सुंदर ढंग से बताया कि ज्ञान बहुत रमणीक है, जिस तरह से बाबा भी मात पिता सखा बंधु लॉन्ड्रीमैन डॉक्टर वकील सब कुछ जज बन जाता, परंतु आप भी, आप सोचो कि कोई समय आप डांसर थे, कोई समय आप सिंगर थे, अब कोई समय आप जज वकील आप भी थे। जरूरी नहीं है कि यही चोला था, फीमेल चोला आधा समय फीमेल आधा समय में हो, ये भी ड्रामा अनुसार हर बात का ड्रामा ने बहुत अच्छा बैलेंस रखा है, तो ये भी हिसाब है। तो बाबा का मां का रूप मैंने एक बहुत ही सुंदर देखा, जबकि हम बाबा से फर्स्ट टाइम मिले थे 1957, फिर बाबा से मिलकर तुरंत ही फिर लंदन आना हुआ, तो हम तो छोटे थे, परंतु रजनी बहन तो अपनी मुरली पढ़ती थी, अमृत वेले करती थी, जो कुछ अपना सिस्टम है भोग लगाना आदाद वो करती रहती थी। तो हम लोग योग में बैठते थे रात्रि के समय, और सोमवार गुरुवार भोग लगता था तो सवेरे भी बैठते थे, परंतु 8 साल की उम्र में कितना ज्ञान दिमाग में जाता तो फिर तो कुछ समय के बाद वो भी छूट गया। परंतु 1959 की बात है, जहां पर जिस स्थान पर हम रहते थे उस हिसाब से मैंने अंदाज लगाया कि वो वर्ष होगा, तो मई का मास था और एक पार्सल आकर के पहुंचा है अपने घर पे। सैटरडे का दिन है तो हम बच्चे घर पे थे, तो पोस्टमैन ने घंटी बजाई, पोस्ट में तो नहीं डाल सकता था लेटर बॉक्स में, तो जब हमने दरवाजा खोला तो पोस्टमैन पार्सल लेके खड़ा था, तो वो दिया, तो हम लोगों ने खोला और उस पार्सल से क्या निकला, 6 आम, आपूसी आम, एयर मेल में बाबा ने बॉम्बे से अबू सियाम भेजे। कहानी ये थी कि बाबा बॉम्बे में थे तो बाबा को आम खिला रहे थे, तो बाबा ने कहा छोटे बच्चे वहां रहते हैं दूर दूर लंदन में, उनको आम नहीं मिल रहा होगा। ये है माँ की दो बहुत बड़ी दो। लौकिक संबंधी और भी थे, उनको किसी को ख्याल नहीं आया कि बच्चों के लिए हम एयर मेल, क्योंकि उन दिनों में सिर्फ एक ही इंडियन शॉप था, ग्रोसरी शॉप पाठक का, वहां वॉरेन स्ट्रीट के ह्यूस्टन के नजदीक। बाकी आजकल तो एक ही रोड पर 10 होंगे शॉप्स, परंतु वो उस समय एक ही शॉप था। और ये जमाना नहीं था कि फल फूल यहाँ से वहां से आप एरोप्लेन में भेजते रहो, परंतु और भी संबंधित थे, उनको ख्याल नहीं आया, बाबा को ख्याल आया। तो जैसे माँ सोचती है बच्चों को क्या पसंद होगा, तो वो बाबा का माँ का रूप बहुत ही सुंदर देखा। टीचर का रूप भी एक बहुत इंटरेस्टिंग देखा। सबसे बढ़िया टीचर वो जो करके दिखाए, जो टीचर बोलता है आप सुन करके फिर बाद में करो, उसका अलग कुछ हिसाब होता, परंतु टीचर प्रैक्टिकल उस बात का डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता तो फिर वो बात कभी भूलती नहीं है। तो ये होंगी 1966 की बात। हम मधुबन में थे, मॉनसून का टाइम था और ठंडी थी बिल्कुल, फॉग होती है आबू में, यहां से यहां तक नजर नहीं आता है कोई, तो और बहुत थोड़े थे मधुबन में उस समय, मोस्टली तो मधुबन निवासी, और हम दादी जानकी के साथ पूना पार्टी में करीब 10 लोग गए थे शायद। तो रात्रि का समय बाबा ने मुरली फिनिश की, फिर बाबा सभा में, छोटी सी सभा थी हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा ढूंढ रहा था भोली दादी को। फिर भोली दादी पर नजर आई तो उसको कहा कि लापसी कल सवेरे बन सकती, तो उसके चेहरे से लगा कि नहीं बन सकती, परंतु उसको अपने मुख से ना नहीं कहना था, तो बाबा समझ गए। तो बाबा ने कहा कि नहीं है, तो उसने कहा बाबा पीसी हुई नहीं है, साफ नहीं की है, पीसी हुई नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, बोरी ले आ करके रखना और थालियां ले आना। तो आजकल जहां वो रेलवे टिकट्स की ऑफिस है ना, और वो पहले दूसरी तरफ चंद्रास दादा का कमरा होता था जहां वो टेप्स बनाते रहते थे, और दूसरा तरफ खाली होता था, और भंडारा छोटा सा जहां आजकल वो बेडिंग की स्टोरेज रहती है, वो वहां भंडारा था। तो सब कुछ छोटा छोटा ही था नेचुरली, थे ही थोड़े। तो वो जो वरांडा था आधा सिर्फ बंद था, जहां दादा चंद्रास दूसरे कमरे थे, बाकी सिर्फ छत लगी हुई थी, टीन की छत बस। तो वहां उस वरांडे में सब्जियां काटते थे, बैठते थे, कभी पिकनिक करते थे, कुछ न कुछ उस वरांडे का मल्टीपर्पज हो गया था। तो बाबा ने वहां कहा कि वहां बोरी रखना और थालियां रखना। तो दादी ने वो प्रबंध किया, फिर बाबा ने दृष्टि दी, योग हुआ फिनिश, फिर बाबा गुड नाइट करके जा रहे थे, परंतु कमरे की तरफ नहीं गए, इस तरफ जहां ये वरांडा था उस तरफ गए। तो बाबा की आकर्षण शक्ति ऐसे होती थी जो जहां बाबा जाते थे जो भी सामने है सब बाबा को फॉलो कर रहे थे, वो बाबा के कमरे में नहीं जाते थे परंतु और स्थानों पर फॉलो करते थे। तो बाबा को फॉलो करते गए तो पहुंच गए वरांडा, वहां पर बोरी बाबा ने खुली हुई दिखाई, फिर बाबा एक ट्रे लेकर के उसमें वो गेहूं डालकर फिर बाबा साफ करने लगे। अभी कौन बाबा को साफ करने देगा, तो बाबा से किसी ने ट्रे ले ली और वो खुद ही फिर उसको साफ करने लगे। बाबा ने दूसरी ट्रे ली, सेम थिंग, बाबा शुरू किया साफ करना, किसी और ने वो ट्रे पकड़ ली, तो ऐसे 10 ट्रे तुरंत ही 10 मिनट के अंदर सारी बोरी साफ हो गई। रात्रि को पीसने के लिए भेजा, चिक्की अपने पास ही पीछे थी जहां एक बैल उसको पीसता था, तो वहां सब कुछ नेचुरल था हमारे ऑर्गेनिक नेचुरल सब कुछ। तो सवेरे सवेरे फिर जैसे बाबा की आज्ञा थी, बहुत ठंडी का मौसम था, तो तभी बाबा ने सोचा था कि गरम गरम लापसी सभी बच्चों को खिलाए। तो टीचर के रूप में बाबा ने बहुत अच्छी ये ट्रेनिंग दी कि किसी को काम करने के लिए नहीं कहो, आप किसी को भी कहेंगे ये काम करो तो शायद करे या शायद ना भी करे, शायद आपको कहे मैं 2 घंटे के बाद करूंगा, अभी तो मैं बिजी हूं, परंतु आप करो तो आपको देख करके अनेक और साथ देंगे। आपने प्रैक्टिकल ये कई बार देखा भी होगा ना, सफाई शुरू करो तो 6 लोग आ जाएंगे मदद करने के लिए, और छोड़ दो चलो कोई ना कोई कर लेगा, कौन करेगा कुछ नहीं होगा, वही का वही रह जाएगा, परंतु आप शुरू करो सब मददगार बन जाते हैं। तो हर बात में बाबा इस तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाया, और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल रहा, परंतु जो बाबा के भिन्न भिन्न पोजेस के फोटोज देखते हो ना, बाबा धोबी घाट में है, बाबा कपड़े धुलाई कर रहा है, बाबा कभी भंडारे में गए, तो ये सब प्रैक्टिकल बाबा कर रहे थे, सिर्फ फोटोग्राफ के लिए नहीं। आजकल कई मारी किसको पोज में खड़ा कर लेते हैं भंडारे में, तुम कर्ची हाथ में ले लो हम फोटो निकाले ऐसे नहीं था, रियली बाबा करके दिखाया कर रहे थे। तो बाबा सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला। और बाकी एक और कहानी मैं सुनाती हूँ, बाबा की बड़ी दया, क्यों, क्योंकि बाप तो सर्व आत्माओं का बाप है, और कईयों ने यह शायद कहानी सुनी भी होगी, कोई हर्जा नहीं, वो स्मृति इमर्ज होती, बाबा का नयन चयन आपके आंखों के सामने घूमे, यही बड़ी बात है। स्मृति दिवस पर स्मृतियों को जागृत करने का दिन है, ये मैंने देखा नहीं है, परंतु अपनी जो ज्योति है ना लंदन वाली सिंधी ज्योति, तो उसकी ये कहानी है। उसकी माँ ने 1965 में मम्मा के देह त्याग के थोड़े दिन पहले ही उसको आबू में लेके गई थी, ताकि वो माँ और बाप रहते थे कैम्बोडिया में, तो वहां इतनी पढ़ाई का ठीक प्रबंध नहीं था, तो बच्ची को पहले कलकत्ता में ग्रैंड मदर के पास रखा था पढ़ाई के लिए, फिर बाद में माँ को ख्याल आया, क्योंकि वो कौन है, वही चंद्रमणि दादी की बहन की बेटी, चंद्रा बहन तो बहुत ही नजदीक गहरा संबंध था यज्ञ के साथ, लास्ट तक ऐसे ही चला। तो उसने सोचा कि यदि मैं बेटी को यहाँ स्कूल में रखती हूँ, बोर्डिंग स्कूल में, तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि मैं बार बार आबू आऊं बेटी को देखने के लिए, परंतु बाबा को भी देखने के लिए। तो उसने ये प्लान बनाया, तो बाबा को फिर उसने गार्डियन बना के रखा, क्योंकि लोकल कोई चाहिए होता है, तो वो गार्डियन था लोकल। तो उस हिसाब से ज्योति को संडे दिन छुट्टी मिल जाती थी, दादा विश्व रतन जाते थे उसको लेने के लिए स्कूल से, सोफिया स्कूल जो अभी भी है, जो जहाँ म्यूजियम है, म्यूजियम से बाजू में ही ऑपोजिट एक छोटी सी पहाड़ी है, जहाँ ऊपर चलते चलो तो वहां पर एक तो सोफिया स्कूल लड़कियों का, और दूसरा भी एक भाइयों का भी एक अलग स्कूल है। तो वहां पर संडे के दिन ज्योति आती थी बाबा के पास, और बाबा उसको कहता था बच्ची बैठ जाओ, तो बाबा के कमरे में ही उसका सारा दिन होता था। फिर और वो थी वेजिटेरियन बचपन से, तो बाबा जानते थे कि स्कूल में तो कॉन्वेंट स्कूल आपको क्या खाना मिलेगा तो उनको वैष्णव खाने का तो मतलब ही नहीं था। तो उसका जो चार पांच साल बाकी उस स्कूल में रही उसकी पालना ही हुई टोलियों और बाबा के दिए हुए फल से। वो वहां क्या खाना ही नहीं खा सकती थी तो बाबा को पता था, तो बाबा लच्छू दादी को कहता था कि पूरी थैली भर करके उसको देना, सारा सप्ताह वो ही खाएंगी। प्रैक्टिकल ऐसे ही चली। तो एक दिन वो संडे के दिन बाबा के पास आई तो बाबा से पूछने लगी, बाबा नंस पूछती है आपको कोयला कहाँ से मिलता? तो बाबा कहता है मतलब क्या, छोटी सी लड़की बाबा से पूछे कि आपको कोयला कहाँ से मिलता? तो बाबा क्यूरियस थे तो बाबा ने कहा मतलब कुछ कारण से नंस ने आपको ये प्रश्न दिया होगा, क्या आपके पास कोयले नहीं है? तो ज्योति कहती है कि नहीं, नंस कहते हैं कि बाजार में आजकल कोयला मिल ही नहीं रहा है। तो बाबा कहता है कि फिर आप लोगों का स्नान पानी कैसे होता, आप लोगों को गर्म पानी नहीं मिलता? तो ज्योति कहे नहीं, आजकल हम ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं सर्दियों के दिन। तो बाबा कहे ये तो बात ठीक नहीं है, अच्छा तुम अपनी नन को बोलना कि वो बैलगाड़ी भेजे, उन दिनों में ट्रक्स नहीं थे, आबों में तो नहीं थे, बैलगाड़ी पर ही काम चलता था, बैलगाड़ी भेजे। तो हाँ बाबा के पास तो सब कुछ है, बाबा देंगे। तो दूसरे दिन सवेरे जब ज्योति ने जाकर के उत्तर दिया तो नंस तो बहुत खुश हो गई। फिर बैलगाड़ी आई और पूरा ही वो भर करके वो बाबा भेज रहे थे। तो जो मेन नन थी उसने बाबा को कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात, बाजार में तो है ही नहीं, आपने फिर भी हमारी मदद की, हमें दिया, तो उसका पैसे का हिसाब। तो बाबा क्या कहे, वो कुमारियां भी मेरी ही कुमारियां हैं, लेन देन का कुछ नहीं है, यह प्यार का। तो बाबा ने उसको तो वो भेज दिया। फिर बाबा ने ज्योति को बताया कि हाँ बाबा तो बेहद का बाप है, सबका बाप है, परंतु बाबा एक और बात ध्यान पर रखते हैं, जो दान दी हुई वस्तु है वो कभी बिक्री नहीं होती। और बाबा को ये कहां से आता था, क्यों बाबा के पास इतना था, क्योंकि धनबाद में, धनबाद है जहां कोयले की खान होती, सरला दीदी की मासी, माँ की बहन, मासी का वहां ससुराल था और वहां पर उनको कोयले की खान थी। तो उन्होंने अपने पति से ये सेवा कराई थी कि हर साल पूरी ट्रेन भर करके पूरा वर्ष का स्टॉक कोयले का आबू आता था। और ये 60s की बात, परंतु लास्ट तक भी जब तक हम पांडव भवन में थे तो शायद 90s तक, ज्ञान सरोवर करीब 95 में आरंभ हुआ। तो मुझे याद आता कि कोयले की ट्रेन आती थी यज्ञ के लिए, वो आती थी नीचे और दादी प्रकाशमणि हम सबको कहती थी कौन चलेगा आज पिकनिक करने जाते हैं नीचे सब हाथ खड़ा करते थे। पिताजी कहती थी पिकनिक तो बाद में होंगे, पहले तो कोयले उठाने होंगे सुनता को शायद याद होगा कोयले उठाने की बात। तो हम लोग बस में नीचे जाते थे, 30 लोग 40 लोग जो भी नौजवान मजबूत थे, और दादी हम लोगों को कुछ कोट ऐसे पहनवाती थी ओवरऑल, तो कपड़े भी खराब ना हो। तो हम लोग अनलोड करते थे वहां ट्रेन की गाड़ी से, और इसमें तब तक ट्रक्स आ गई थी तो ट्रक में हम लोग भरते थे वो कोयला। तो बाबा का ये इंटरेस्टिंग मैसेज था कि दान दी हुई चीज कभी बिक्री नहीं होती, परंतु बाबा की आप देखो कितनी बड़ी दया, वो बच्चियां भी मेरी ही बच्चियां हैं। लास्ट बात मैं सुनाती हूँ क्योंकि फिर और भी कार्यक्रम होता। एक मुरली में बाबा ने पूछा था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी किराया देता। शिव बाबा आते हैं वो हिसाब अलग, ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं वो हिसाब अलग। तो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ अपनी त्याग, अपनी तपस्या, अपनी सेवा, वो तो आप लोगों को मालूम ही है। तो उस आधार से वो नारायण बनी, परंतु फिर किराया कौन सा दिया बाबा ने? तो बाबा ने साकार मुरली की बात है, तो बाबा ने उसमें स्पष्ट नहीं किया। तो हम लोगों के पास मास्टर ज्ञान सागर बैठी होती थी दादी जान की, तो कोई भी बात होती थी तो हम उनसे पूछ लेते थे। तो हमने पूछा बाबा ने कौन सा किराया दिया ब्रह्मा बाबा को, तो दादी एक सेकंड सोचा, फिर कहा कि जिस घड़ी से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, तुरंत ही उसकी बुद्धि बेहद में चली गई। नाम तो ब्रह्मा बाद में पड़ा, वो था फिर कराची के दिनों में, हैदराबाद के दिनों में नहीं, कराची के दिनों में। वो भी कुछ समय थोड़ा सेटल हुए, फिर उसके बाद तो वो होंगी शायद 38-39 की बात, जब बाबा खास आते थे पुष्प के तन में और फिर उसके द्वारा कुछ मुरली चलती थी और बाबा मामा सामने बैठते थे, दृष्टि लेते थे, सुनते थे। और फिर उस समय बाबा ने इस, वो 15 साल की लड़की थी, तो उसके द्वारा बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने कहा, बाबा को पीयू कहते थे, तो पीयू ने आकर के बताया कि इसका नाम है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद पर नाम नहीं रखा, परंतु जैसे गीत में था कि नाम इसका रखा ब्रह्मा। तो वतन से वो बाबा आए थे और नाम दिया था, परंतु ये बाबा दादी का कहना था कि जैसे ही बाबा बाबा बने, उस समय से बाबा की बुद्धि भी बेहद में और दिल भी बेहद की, सब हमारे बच्चे हैं। तो जब इतना सारा झुंड आने लगा, तो उस समय भी बाबा ने बड़ी दिल रख करके सब कुछ स्वीकार किया, ओम निवास तैयार किया बच्चों के लिए। और फिर जब घमसान होने लगा तो बाबा शांति से कराची में चले गए। परंतु जो भी साक्षात्कार हो रहे थे, सबको पता चला कि बाबा चले गए हैं, तो बाबा अपना सब कुछ तो वहां हैदराबाद में छोड़ के आ गए कराची। आजकल तो 3 घंटे की रोड की जर्नी है, उन दिनों में तो ओवरनाइट ट्रेन की जर्नी थी, बहुत लंबी, हाईवेज नहीं बने थे। आजकल तो बहुत अच्छा हाईवे बन गया है। तो बाबा को सबके लिए असाइलम देने के लिए 5 मकान लेने पड़े, एक बहनों का, माताओं का, फिर भाइयों का, बच्चों का, और जहां खुद बाबा रहते थे वहां कुमारियों का, इस तरह से अलग अलग। अभी कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोचेगा पहले तो मुझे अपने परिवार को ही संभालना है। बाबा का परिवार भी तभी भी बड़ा था, लौकिक परिवार, मैं आपके लिए क्यों मकान दूं? परंतु बाबा की बुद्धि बिल्कुल देहत में, ये मेरे बच्चे हैं। तो बाबा ने जल्दी जल्दी में एक मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, 5 मकान ले लिए, ताकि सब आकर के शांति से रह सके। तो तुरंत ही बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति बदल गई, बेहद में बाबा चले गए। तो दादी कहती थी कि ये ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ नहीं किया, ये जो तुरंत बुद्धि दृष्टि वृत्ति बदल गई, बेहद में चले गई, ये था बाबा का वरदान। तो बाबा के वरदान भी बाबा शेयर करते हैं, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि बस फाउंडेशन है स्मृति, स्मृति को ठीक रखो, फर्स्ट लेसन आत्म स्मृति, और फिर उस आधार पर बाबा की याद। परंतु आत्म स्मृति के लेसन से ही आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपकी कृति, संस्कृति, सृष्टि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता। तो बाबा की तो तुरंत हो गई, और हम लोग कहां तक पहुंचे हैं बाप समान बनने में, अभी तक कहेंगे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा की बातें तो हर रोज आपको मिलती रहती है, बहुत कुछ बाबा साकार मूल्यों में, अव्यक्त मूल्यों में देते ही रहते। तो आप खूब स्टडी भी करो, डांस भी करो, गीत भी गाओ, सब कुछ, जैसे आज बाबा ने कहा, खुद को बहुत बहलाते रहो ताकि आप खुश रहो। क्यों? क्योंकि संसार को आजकल खुशी चाहिए, सच्ची खुशी किसके पास ही नहीं है। धन दौलत भी होगा, उनों का भी हाल क्या लगा हुआ है, कुछ न कुछ दुख की बातें अंदर चल ही रही है, हर एक की कहानी यही है। तो हम खुश रहेंगे तो औरों को भी खुशी का खजाना दे सकेंगे। आप लकी हैं, कल रात्रि को टोरंटो से कोई आया नहीं, अबू से आया यहाँ खास जर्नी ब्रेक की टोली पहुंचाने के लिए, और फिर आज सवेरे ही फिर टोरंटो गया। तो हंसा ने खास टोली भेजी है दादी की, तो वो तुरंत ही घर में पहुंची और आपके पास आई। तो आप सबके लिए मधुबन की टोली भी है, यहाँ की हार्मनी हाउस की भी टोली है, वो भी टोली है, डबल टोली मिलेंगी। ठीक है दीपिका बहन। ओके, ओम शांति। पहले 3 मिनट अच्छा योग करते हैं, फिर यहाँ नीचे
शुक्रिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।